नमस्कार, आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ये पूज्य गुरुदेव, युग ऋषि, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक विशेष उद्बोधन पर आधारित है। विषय है गायत्री उपासना की सफलता की 3 शर्तें।
जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।
हाँ, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने तो अपना पूरा जीवन ही गायत्री मंत्र के शोध में समर्पित कर दिया था। वे इसे भारतीय धर्म और संस्कृति की आत्मा कहते थे, बीज मंत्र, गुरु मंत्र।
बिल्कुल, उनका मानना था कि इसमें हमारे पूरे तत्व ज्ञान और विज्ञान का, कह लीजिए, सार छिपा है, जैसे एक छोटे से बीज में पूरा पेड़।
सही, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि पूज्य गुरुदेव के 70 सालों के जो गहरे अनुभव हैं, जो शोध है, उससे निकले उन खास नतीजों को समझें कि भाई गायत्री उपासना को सचमुच सफल और प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए इस गहरी समझ को थोड़ा खोलते हैं परत दर परत।
जी,
पूज्य गुरुदेव ये तो साफ कहते हैं कि सिर्फ मंत्र जाप कर लेना या कुछ पूजा पाठ के कर्मकांड कर लेना वो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया है, जैसे किसी बीज को उगने के लिए सिर्फ बीज काफी नहीं होता, अच्छी जमीन चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए, तीनों चीजें जरूरी हैं।
बिल्कुल सही उदाहरण है।
तो वैसे ही गायत्री उपासना रूपी बीज के फलने फूलने के लिए भी 3 अनिवार्य शर्तें हैं। तो पहली शर्त क्या है?
देखिए, पहली और शायद सबसे बुनियादी शर्त है अटूट श्रद्धा। गुरुदेव बताते हैं कि श्रद्धा अपने आप में एक जबरदस्त शक्ति है, बिल्कुल बिजली या आग की तरह।
अच्छा,
शक्ति?
हाँ,
शक्ति। ये वो शक्ति है जिसके बल पर इंसान पत्थर में भी भगवान देख लेता है, या कभी कभी डर से रस्सी में सांप का भ्रम पाल लेता है। अगर उपासना सिर्फ, मतलब, जुबान से हो रही है, यंत्र की तरह, बिना मन के, बिना विश्वास के, तो उसका असर बहुत कम होता है। मंत्र और उपासना की जो विधि है उस पर गहरी आस्था, अटूट विश्वास, वही चीज है जो चमत्कार जैसे लगने वाले परिणाम लाती है। जिनके मन में श्रद्धा या विश्वास की कमी होती है ना, वे अक्सर उपासना करते हुए भी खाली हाथ रह जाते हैं। ये तो कह लीजिए साधना की नींव है।
ये बात तो बहुत पते की है कि श्रद्धा सिर्फ कोई भावना नहीं बल्कि एक वास्तविक शक्ति है।
अच्छा, तो नींव तो श्रद्धा हो गई, लेकिन इमारत किस पर टिकेगी? दूसरी शर्त क्या है?
हाँ, तो दूसरी शर्त है परिष्कृत व्यक्तित्व।
परिष्कृत व्यक्तित्व, इसका मतलब?
इसका सीधा सा मतलब है एक सुधरा हुआ, साफ सुथरा चरित्र, सदाचारी होना, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना, दूसरों की भलाई के कामों में लगना, अपने व्यक्तिगत जीवन को लगातार बेहतर बनाना, ऊंचा उठाते जाना।
मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि अपने आचरण पर भी काम करना। बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव का 70 साल का अनुभव यही निचोड़ देता है कि अध्यात्म का जो असली फायदा है, उसकी शक्ति का अनुभव, वो सिर्फ उन्हीं साधकों को मिला जिन्होंने उपासना के साथ साथ अपने व्यक्तित्व को, अपने रोजमर्रा के जीवन को शालीन और उन्नत बनाने की लगातार कोशिश की।
अच्छा,
भगवान का नाम लेने या उपासना करने का असल परिणाम तो यही होना चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व सुधरे, हमारे विचार और कर्म शुद्ध हों। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भाई समझना चाहिए कि हमारी उपासना की विधि में या शायद हमारी समझ में ही कहीं कोई बड़ी चूक हो रही है। उन्होंने खुद अपने जीवन को परिष्कृत करने पर इतना जोर दिया, कहते थे खुद को धोबी की तरह धोना और धुनिए की तरह धुनना पड़ता है।
ये तो सचमुच आत्म मंथन की बात है। सही, और तीसरी शर्त जिसके बारे में आपने कहा कि वो शायद सबसे महत्वपूर्ण है।
हाँ, तीसरी शर्त है उच्च स्तरीय दृष्टिकोण या उद्देश्य।
उच्च स्तरीय उद्देश्य?
हाँ, यानी हम उपासना कर किस लिए रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है।
इसका क्या मतलब हुआ? क्या छोटी मोटी अपनी जरूरत की चीजों के लिए उपासना नहीं करनी चाहिए?
देखिए, पूज्य गुरुदेव का कहना है कि देवता या जो देवी शक्तियां हैं वो भी सहायता करने से पहले हमारे उद्देश्य को परखते हैं। बहुत छोटी छोटी या स्वार्थ से भरी इच्छाओं के लिए या उन चीजों के लिए जिन्हें हम खुद अपनी मेहनत से पा सकते हैं, उनके लिए देवी शक्तियों का आवाहन करना एक तरह से हमारी अपनी सोच के छोटेपन को दिखाता है।
अच्छा,
देवता भी अगर हम उन्हें इस रूप में समझें तो वो अपनी शक्ति का उपयोग अच्छे, बड़े और ऊंचे कामों के लिए करना चाहते हैं, वो भी व्यस्त हैं, कह लीजिए।
हाँ, ये बात तो है।
पूज्य गुरुदेव ने खुद हमेशा बहुत ऊंचे उद्देश्य रखकर उपासना की, जैसे दुखी मानवता की सेवा हो, देश धर्म समाज और संस्कृति का भला हो। उन्होंने भगीरथ का उदाहरण दिया जिन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे लोक कल्याण के लिए गंडा को लाने का महान तप किया था। जब उद्देश्य इतना ऊंचा और निस्वार्थ होता है तो दैवी सहायता अपने आप खींची चली आती है।
तो अगर इन तीनों बातों को एक साथ देखें, अटूट श्रद्धा, परिष्कृत व्यक्तित्व और उच्च स्तरीय उद्देश्य, तो इनका सार क्या निकलता है? गायत्री उपासना की सफलता का राज क्या है?
सार बिल्कुल साफ है, जैसा गुरुदेव के उदाहरण से भी स्पष्ट है। जैसे अच्छी फसल के लिए बीज, भूमि और खाद पानी तीनों का होना अनिवार्य है, किसी एक के बिना काम नहीं चलता। वैसे ही गायत्री उपासना की सफलता के लिए ये तीनों शर्तें, अटूट श्रद्धा, परिष्कृत व्यक्तित्व और उच्च स्तरीय दृष्टिकोण, ये अनिवार्य हैं। इनके बिना गायत्री मंत्र जैसा शक्तिशाली बीज भी पूरी तरह फल नहीं दे पाएगा।
सही।
पूज्य गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि गायत्री कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, पारस है या अमृत है, लेकिन तभी है जब साधक इन तीन शर्तों को पूरा करता है। जैसे गाय कितनी भी दूध देने वाली क्यों ना हो, बिना चारा पानी दिए दूध नहीं देगी ना।
बिल्कुल सही कहा। और क्या इन शर्तों का गायत्री मंत्र के गहरे अर्थ से भी कोई संबंध है?
हाँ बिल्कुल है। असल में ये तीन शर्तें गायत्री मंत्र के ज्ञान पक्ष से निकलने वाली तीन मूल शिक्षाओं को जीवन में उतारने का तरीका है। अटूट श्रद्धा हमें आस्तिकता सिखाती है, ईश्वर के न्याय पर अटूट विश्वास रखना, जिससे हम गलत कामों से बचते हैं। परिष्कृत व्यक्तित्व हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, यानी आत्मबोध, खुद को जानना, अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें सुधारना और बाहरी परिस्थितियों के बजाय खुद को जिम्मेदार मानना।
ओके।
और उच्च स्तरीय उद्देश्य हमें धार्मिकता सिखाता है, यानी कर्तव्य परायणता, समाज और विश्व के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाना। तो ये तीनों शर्तें मिलकर ही गायत्री के संपूर्ण विज्ञान को जीवन में साकार करती हैं।
तो ये समझना बहुत जरूरी है कि गायत्री उपासना सिर्फ एक मंत्र जपने की क्रिया नहीं है, बल्कि ये तो जीवन को पूरी तरह बदलने का, उसे ऊंचा उठाने का एक संपूर्ण विज्ञान है, और ये तीन शर्तें उस विज्ञान की नींव है।
बिल्कुल सही। पूज्य गुरुदेव का ये निष्कर्ष हमें गहरी सोच देता है ना।
हाँ।
कि क्या हम अपनी साधना में या जीवन के किसी भी प्रयास में सिर्फ बाहरी विधि विधान या तरीके पर ही सारा ध्यान लगा रहे हैं, या हम उस काम के पीछे की अपनी श्रद्धा, अपने चरित्र की पवित्रता और अपने जीवन के उद्देश्य की ऊंचाई पर भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं?
ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।
शायद जीवन के किसी भी क्षेत्र में सच्ची और स्थायी सफलता का रहस्य इसी संतुलन में छिपा है, सिर्फ कर्मकांड में नहीं।